ஹரே கிருஷ்ண. அத ஏகாதசோத்யாயஹ ஸ்ரீமத் பாகவதம் பிரதம் ஸ்கந்த கியாரவாத்யாய ஸ்லோக சங்க்யா 1, 2 and 3. இஸ் ஆத்யாத்மிக ஞான பிரவேஷ் கர்னே சே பஹலே குரு அர் கௌரங்க சே கிருபா கி யாச்சனா கர்த்தே ஹுயே மங்களாச்சரண் கரேங்கே தாக்கி ஹம் ஜோ அத்யயன் கர் ரஹே ஹே உஸ்கா பூரா பூரா லாப ப்ராப்த ஹோ சகே ஜோ கி ஹே கிருஷ்ண பிரேம் கி ப்ராப்தி. ஓம் அக்யாந்தி மிரந்தஸ்ய ஜ்ஞானஞ்சனா ஷலாகயா சக்ஷுரும் மிலிதம் யேனா தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நம. ஸ்ரீ சைதன்யா மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மாயா ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வஞ்சீ விபூஷிதகரா நவநீரதாபா பீதாம்பரதருணபிம்பஃபல தரோஷ்டா புரேந்திரசுந்தரமுகாத் அரவிந்த நித்ராத் கிருஷ்ணாத்பரம் கிமபி தத்வ அஹம் ந ஜானி யம் ப்ரஹ்மா வருணேந்திர ருத்ர மருத ஸ்துவந்தி ஈஸ்தவி வேதேசாங்கபத் க்ரமோபநிஷதி காயந்தி யம் சாமகா த்யானாவஸ்தித தத் கதேன மனசா பஷ்யந்தி யம் யோகினோ யஸ்யாந்தம் ந விதோ சுராசுரகணா தேவாய தஸ்மே நமஹ. நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதீம் வ்யாஸம் ததோ ஜாயமுதீரயேத் நஷ்டப்ராயேஷு பத்ரேஷு நித்யம் பாக்வத சேவயா பகவதி யுத்தம ஸ்லோகே பக்திரபவதி நைஷ்டிகி. பஞ்சதத்வாத்மகம் க்ருஷ்ணம் பக்தரூப ஸ்வரூபகம் பக்தாவதார பக்தாக்யம் நமாமி பக்த சக்திகம். வஞ்சாகல்பதரூப்யஸ்ய க்ரிபா சிந்துப்ய ஏவச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நம. ஜய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசதி கௌர பக்தவிருந்த. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரி 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 ராம ஹரி ராம 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 ஹரி ஹரி. ஸ்ரீமத் பாகவதம் மகாபுராண கி ஜெய ஹோ. அத்யாய 11 பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ண கா துவாரிகா மே பிரவேஷ். ஆஜ் சூத் கோஸ்வாமி ஹமே வோ திருஷ்ய திகா ரஹே ஹே ஜப் பகவான் அப்னே துவாரிகா வாபஸ் லோட்டே سوت گوسوامی کہہ رہے انارتان، یعنی کہ وہ اپنے دوارکا میں پہنچے جہاں پر بھگوان کے سب پریمی جن بڑی بے صبری سے بھگوان کی پرتیکشا کر رہے ہیں. اتیانت ہی سندر درشیہ ہے. کرپیا میرے ساتھ ساتھ اچارن کیجیے. سوت اواچ انارتانس اپوریچ سوریتھان جنپدان سوکیا دتمودرورم تیشام وشادم شمینیو انارتانس اپوریچ سوریتھان جنپاد سوریت جنپدان سوکیا دتمودرورم تیشام وشادم شمینیو انارتانس اپوریچ سوریتھان جنپدان سوکیا دتمودرورم تیشام وشادم شمینیو. سوت گوسوامی کہہ رہے انارتانس اپوریچ. انارتان مطلب بھگوان، جو بھگوان کا جو دیش ہے جہاں پر بھگوان رہتے ہیں دوارکا. س اپوریچ یعنی نکٹ پہنچ. جیسے ہی دوارکا آیا تو بھگوان کو بھی بہت زیادہ سنتوشٹی، بہت زیادہ آنند آ رہا تھا. جیسے ہم کئی سمے سے اپنے گھر سے دور ہوتے ہیں تو جیسے جیسے ہمارا گھر واپس ریٹرن جب آ رہے ہوتے ہیں، جیسے جیسے گھر کے قریب پہنچتے ہیں تو کتنا آنند آ رہا ہوتا ہے. تو سوریدھان، تو جو دوارکا نگری ہے وہ اتینت ہی سمرد ہے، بہت ہی سندر، بہت وشال، بہت وبھو نگری ہے. جنپدان سوکھیان، تو جو بھگوان کا نگر جو ہے، سوکھیان مطلب بھگوان سوئم وہ نگری، کیونکہ بھگوان نے بسائی ہے تو بہت ہی سندر ویبھو شالی ہے. تو وہاں پہنچ کر بھگوان نے کیا کیا؟ ددمو درورم تیشام. ددمو کا مطلب ہوتا ہے بجایا، درورم، درورم کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی شبھ شنکھ، یعنی کہ بہت زیادہ شریشٹھ، سب سے زیادہ دیویہ جو شنکھ ہے، جو بھگوان کا پنچ جنیہ شنکھ ہے. وہ سنسار میں شنکھ تو ویسے بھی بہت زیادہ پوتر مانا گیا ہے، لیکن بھگوان کے ہاتھ میں جو شنکھ ہے اس کو پانچ جنیہ کہتے ہیں. بھگوان جب رج میں ہوتے ہیں تو بانسری بجاتے ہیں اور بانسری بجا کر سب کو آنندت کرتے ہیں. پرنتو دوارکا میں جیسے ہی بھگوان قریب آئے دوارکا کے، انہوں نے کیا کیا؟ دتمو درورم تیشام، تو بہت ہی اپنا دیویہ شنکھ بھگوان نے بجایا. اور وشادم شمینیو، وشادم مطلب جو بہت زیادہ دکھی تھے، جو بہت زیادہ نراش ہو گئے تھے بہت بھگوان کو، کیونکہ اب بھگوان ان کے ساتھ رہتے تھے لیکن اتنے سمے سے بھگوان دوارکا سے دور ہستناپور میں تھے، وہاں پر یدھ میں تھے، تو ایک ایک کشن ان دوارکا واسیوں کا کیسے بیت رہا تھا، کتنا بھگوان کو یاد کر رہے تھے. ایک ایک گھڑی، ایک ایک پل، ایک ایک ورش کے سمان لگتا تھا. اسے ہر روز صبح سوچتے تھے کہ شاید آج بھگوان آ جائیں گے، کیونکہ ایسے ایسے میں تو کیا نہیں کہ کب آؤں گا، تو پتہ نہیں تھا کہ کب آئیں گے. روز ہر روز صبح ہوتی تھی اس آس میں وہ جیتے تھے آج ضرور کرشن لوٹیں گے، اور رات ہوتی تھی تو سوچتے تھے آج نہیں آئے کل اوشیہ آئیں گے. تو بہت زیادہ دکھی تھے، بہت ان کو کرشن بہت یاد آ رہے تھے، تو بہت زیادہ وشاد میں تھے. اب بھگوان کو پتا تھا کہ میرے پریمی جن مجھ سے بہت زیادہ پریم کرتے ہیں اور بہت زیادہ یاد کرتے ہیں مجھے، تو بھگوان ابھی پہنچے نکٹ اور پھر انہوں نے فوراً سے کیا کیا؟ ددمو درورم تیشام وشادم شمینیو، ان کا دکھ دور کرنے کے لیے انہوں نے زور سے شنکھ بجایا. کیول شنکھ بجانے سے ان کا دکھ دور نہیں ہوگا، दुख, उनका कष्ट, उनका विषाद तो तब दूर होगा जब वो भगवान से मिलेंगे, भगवान को आलिंगन करेंगे, प्रेम से भगवान के दर्शन करेंगे, भगवान के साथ प्रेम का रस का आदान प्रदान करेंगे, तब जाकर कहीं उनके दुख का नाश होगा। परंतु क्योंकि भगवान ने सोचा कि अब मैं आ गया हूँ, तो अपने आगमन की घोषणा कर दी कि बस जो प्रेमी होता ना उसको खाली ये पता चल जाता है कि मेरा प्रीतम आ रहा है, पहुंच गया है, बस कुछ ही क्षण में मुझे उसका दर्शन होगा, तो उसी से उसका दुख जो है वो कम हो जाता है। तो समझो विरह ताप को कम करने का प्रयत्न करते हुए भगवान ने अपना शंख बजाया। अनुवाद देखिए, सुत गोस्वामी ने कहा, आनर्तों के देश के नाम से विख्यात अपनी अत्यंत ही समृद्ध राजनगरी के निकट पहुंचकर भगवान ने अपना आगमन बताने तथा निवासियों की निराशा को शांत करने के लिए अपना शुभ शंख बजाया। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय हो। श्रीला प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के कारण भगवान अपनी समृद्ध नगरी राजनगरी द्वारिका से दीर्घ काल तक बाहर थे, जिससे नगर निवासी उनके वियोग के कारण विषाद से अभिभूत थे। जब भगवान पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो उनके नित्य पार्षद भी उनके साथ आते हैं, जिस तरह राजा के साथ उसका पूरा दल चलता है। भगवान के ऐसे पार्षद नित्य मुक्त आत्माएं होते हैं और वे अत्यंत ही स्नेह के कारण क्षण भर भी भगवान का विछोह सहन नहीं कर सकते। इस प्रकार द्वारिका नगरी के निवासी खिन्न थे और भगवान के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। अतः शुभ शंख की आगमन सूचक ध्वनि अत्यंत ही उत्साहवर्धक थी और इस ध्वनि से उनकी खिन्नता का शमन हुआ। वे सब भगवान को अपने बीच देखने के लिए अत्यंत ही इच्छुक थे और वे सभी उनका ठीक से स्वागत करने के लिए चौकन्ने हो गए। वे भगवान के प्रति प्रगाढ़ प्रेम के लक्षण हैं। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये सब जो द्वारिका वासी या जब भगवान संसार में आते हैं उनको जिन व्यक्तियों को, जिन लोगों को भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है, वो कोई साधारण नहीं होते हैं, वो सब भगवान के नित्य पार्षद होते हैं। तो वो इस संसार में आते हैं क्योंकि भगवान के साथ लीला करनी होती है उनको। अब इस संसार में आ गए और आने के बाद उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता था कि भगवान के साथ रहेंगे, भगवान के साथ बैठेंगे, भगवान के साथ खाएंगे, भगवान के साथ ही हमारा अनजीवन बीतेगा। लेकिन जब भगवान उनको छोड़ कर किधर जाते हैं दूसरी जगह पर, तो वो जो विरह है वो उनके लिए असहनीय हो जाता है, बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उनके आने का पूरा उद्देश्य या आकर समाप्त हो जाता है, वो भगवान का सानिध्य प्राप्त नहीं कर पाते। तो उनको ऐसा लगता है कि हमारे जीने का कोई फायदा ही नहीं है, फिर तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। लेकिन अब भगवान ने अपना शंख बजाकर उन समस्त दुखी हृदयों को संतोष प्रदान किया, विषादम शमयन निव। और आगे सुत गोस्वामी अत्यंत ही सुंदर भाव प्रकट कर रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान शंख बजा रहे हैं। भगवान वास्तव में भक्तों शास्त्र वही है जिसे पढ़कर हमें भगवान के साथ भगवान का सानिध्य रियलाइज हो, हमें ऐसा लगे कि हम भगवान को देख रहे हैं, भगवान की दिव्य लीला को पढ़कर हम वहीं पर अपने आप को महसूस करें कि मुझे वो सब दिख रहा है, उसे शास्त्र कहते हैं। वास्तविक भागवत का मतलब यही है कि आपको भगवान का संग प्राप्त हो। तो बहुत ही सुंदर रीति से सूत गोस्वामी भगवान का शंख बजाने का जो दृश्य है, यानी उस समय भगवान के शंख वादन का जो चित्र है वो अत्यंत सुंदर रीति से सुख गोस्वामी बता रहे हैं। कभी कभी हमको ऐसा इस बात का बहुत ज्यादा दुख होता है कि जब भगवान की सारी लीलाएं बीत गई तभी ये वीडियो कैमरा इन्वेंट हुआ है ना। अगर उस समय हुआ होता तो सारा लाइव टेलीकास्ट करते थे ना। अभी भगवान तो अपनी लीला समेट कर चले गए, इसके बाद वो कौन सा व्यक्ति है जिसके जो दर्शन के योग्य है, जिसके फोटो निकाले जाए, जिसका कैमरा से वीडियो बनाया जाए या जिसके कार्यकलापों को नोट करके पुनः पुनः देखा जाए। यदि भगवान जब थे उनका यदि किया ये वीडियो शूट किया जाता था तो एक एक क्षण में हम भगवान की एक एक लीला को देख रहे होते थे। भगवान ऐसे किया, अच्छा भगवान ऐसे कर रहे थे, भगवान का सुंदर मुख, भगवान का। लेकिन इसके बाद यहाँ पर अभी जो सूत गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं वो भी दिव्य है। इतना सुंदर रीति से भगवान का वर्णन कर रहे हैं, वे कहते हैं श्लोक संख्या 2, स उच्च काशे धवलो धरो धरो प्यूरुक्रमस्या धर शोण शोणिमा धात्मायमानः करकंज संपुटे यथाप्स खंडे कलहं स उत्स्वनः। स उच्च काशे धवलो धरो धरो प्यूरु क्रमस्या धर शोण शोणिमा धात्मा यमानः करकंज संपुटे यथाप्स खंडे कलहंस उत्स्वनः। स उच्च काशे धवलो धरो धरो प्युरुक्रमस्या धर शोण शोणिमा धात्मायमानः करकंज संपुटे यथाप्स खंडे कलहंस उत्स्वनः। स उच्च काशे, स मतलब वह क्या, भगवान जिस शंख को बजा रहे थे उसके विषय में बता रहे हैं कि उच्च काशे बहुत ही स्वच्छ था, बहुत ही सुंदर था जो भगवान शंख बजा रहे थे। और धवलो धरो धरो, धवलो मतलब सफेद तथा बड़े, अधरो इसको बोलते हैं, उदर किसको बोलते हैं, पेट को बोलते हैं। यानी कि वो जो शंख था उसका जो सेंटर का हिस्सा था ना वो बहुत ही बड़ा था, धवल यानी बहुत ही मोटा सा शंख था, ऐसा नहीं छोटा सा शंख भगवान बजा रहे हैं। धर यानी कि वो जो शंख है वो बहुत ही, एक तो इतना सुंदर था और ऊपर से बहुत ही धवलो धरो बहुत ही मोटा सा था। और अप्युक्रमस्य अपि मतलब यद्यपि वह ऐसा है, उरुक्रमस्य मतलब महान साहस, उरुक्रम भगवान को बोलते हैं। भगवान ने जैसे ही वो, पहले तो वो श्वेत रंग का था, बहुत ही व्हाइट कलर का था, स्वच्छ था, लेकिन जैसे ही भगवान के हाथ में आए अधर शोण शोणिमा, अधर मतलब होंठों के दिव्य गुण से और शोणिमा मतलब लाल हुआ। अब भगवान के जो होंठ हैं वो बहुत लाल है, ऐसा नहीं है कि भगवान लिपस्टिक लगाते हैं और उसको लाल करते, नहीं, भगवान नेचुरल है। भगवान जो हम लोग यहाँ पर ऐसे सोचते ना, ऐसी आंखें होती तो कितना सुंदर होते, ऐसे हाथ होते, ऐसा फेस होता, ऐसे होंठ होते, तो भगवान नेचुरली सुंदर है। भगवान जो षडेश्वरी है उसमें है संपूर्ण सुंदरता जिसके पास है उसे भगवान कहा जाता है। तो भगवान के होंठ इतने लाल लाल हैं, इतने रसीले होंठ हैं। अब वो होंठ कहाँ पर है, शंख बजा रहे हैं तो शंख के ऊपर है ना। तो ये बहुत ही साफ सुथरा व्हाइट कलर का शंख था अब क्योंकि भगवान अदर्शोणी भगवान का जो भगवान के जो होंठ थे वो दिव्य थे, लाल थे, तो उसके स्पर्श से वो शंख भी लाल दिख रहा था। मतलब भगवान जिस तरह से डायमंड्स में कैसी चमक आती है, तो भगवान का शरीर है ना, उसके उसकी चमक जो है वो शंख पे पड़ रही है और शंख भी एकदम लाल हो रहा है। दाद मा यमानः, यानी जैसे भगवान ने वो शंख बजाया दोनों हाथों, कर कंजर संपुटे, यानी कर कमल की हथेली द्वारा पकड़ा हुआ, दोनों हाथों में भगवान ने शंख पकड़ा था और बहुत जोर से बजा रहे थे। अब भगवान के हाथ जो होते ना, उसकी हथेली भी बहुत लाल लाल होती है। भगवान स्वयं श्याम रंग के होते हैं, परंतु पांव के तलवे, हाथ की हथेली और भगवान के चीक्स और भगवान के लिप्स, ये सब बहुत बहुत लाल लाल होते हैं। तो अब क्योंकि दो लाल लाल हाथों में कर कंजर संपुटे, यानी कमल की पंखड़ियों जैसे भगवान के होंठ और दो कमल जैसे हाथ हथेलियों में जैसे शंख पकड़ा हुआ था, तो कैसा दिख रहा था? वे कहते हैं यथाब्ज खंडे कलहंस उत्सवन, यथाब्ज खंडे मतलब जिस प्रकार कमल के दो पुष्प होते हैं, कमल के पुष्प से कलहंस सुंदर हंस उत्सवन जोर से शब्द करता है। जैसे लग रहा था कि राजहंस जो बहुत ही सुंदर हंस है वो कौन से रंग का होता है? सफेद रंग का, व्हाइट कलर का होता है। और अगर दो लाल लाल कलर के कमल के फ्लावर्स के ऊपर जब वो बैठे, तो सफेद कलर का जो हंस है राजहंस कलहंस, वो कितना सुंदर दिखेगा। और जब उनके ऊपर उच्च स्वर से बोल रहा है, बहुत सुंदर अपनी आवाज निकाल रहा है, यानी तो ये कह रहे हैं सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि यथाब्ज खंडे कलहंस उत्सवन, जब भगवान अपने दो लाल लाल हाथों में पकड़ के उस शंख को अपने लाल लाल होंठों से लगा रहे थे, तो उसकी लालिमा जो है वो उसके कारण वो शंख भी लाल दिख रहा था। और ऐसा लग रहा था क्योंकि वो वास्तव में धवल था, वास्तव में बहुत उजला था, तो जब जैसे ऐसा लग रहा था जैसे दो कमल के बड़े से फूल हों और उसके ऊपर राजहंस बैठ के अपनी मीठी मीठी बोली बोल रहा है। कितना सुंदर बता रहे हैं सूत गोस्वामी। इससे मतलब और क्या वीडियो, मतलब शब्द, ऐसा कहा जाता है दर्शन करने के दो रास्ते हैं, दो तरीके हैं, दो तरीकों से दर्शन किया जा सकता है। एक तो नेत्रों के द्वारा साधारण दर्शन होता है और दूसरा होता है कर्णों के द्वारा। नेत्रों के द्वारा जब हम भगवान का दर्शन करते हैं तो हो सकता है इतना सुंदर रीति से ना देख सके, क्योंकि हमारे पास वो नेत्र ही नहीं है जिससे हम भगवान के डिटेल से दर्शन कर सकें। लेकिन जब कोई संत, कोई भक्त, कोई शुद्ध वैष्णव हमें भगवान के विषय में बता रहा होता है, तो एक एक भगवान के अंग के विषय में, एक भगवान ने किस तरह से हंसा, किस तरह से निहारा, किस तरह से भगवान ने शंख बजाया, शंख को कैसे पकड़ा, हर एक चीज जो है वो कितना डिटेल से, कितना सुंदरता से दिखा रहे सूत गोस्वामी। अनुवाद देखिए, श्वेत तथा मोटे पेट वाला शंख भगवान के हाथों द्वारा पकड़ा जाकर तथा उनके द्वारा बजाया जाकर ऐसा लग रहा था मानो उनके दिव्य होंठों का स्पर्श करके, भगवान के हाथों द्वारा पकड़ा जाकर तथा उनके द्वारा बजाया जाकर ऐसा लग रहा था मानो उनके दिव्य होंठों का स्पर्श करके लाल हो गया हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई श्वेत हंस लाल रंग के कमल दंडों से खिलवाड़ कर रहा है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान के होंठों के स्पर्श से श्वेत शंख की लालिमा आध्यात्मिक महत्ता की सूचक है। भगवान पूर्ण आत्मा है और भौतिक पदार्थ इस आध्यात्मिक जगत का अज्ञान है। वस्तुतः आध्यात्मिक प्रकाश में पदार्थ नाम की कोई वस्तु नहीं है और परमेश्वर श्री कृष्ण के स्पर्श मात्र से यह आध्यात्मिक प्रकाश हो जाता है। भगवान जगत के कण कण में व्याप्त हैं, वे किसी भी कण में अपनी उपस्थिति प्रकट कर सकते हैं। भगवान के प्रगाढ़ प्रेम तथा भक्ति से, या दूसरे शब्दों में भगवान के आध्यात्मिक स्पर्श से प्रत्येक वस्तु उसी तरह लाल हो जाती है जिस प्रकार भगवान के होंठों में लगा हुआ शंख। यहाँ शिला प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर दृष्टांत दे रहे हैं कि संसार में हर चीज भौतिक है, लेकिन भगवान पूर्णतः आध्यात्मिक है। तो जब कोई भी भौतिक वस्तु भी भगवान के संपर्क में आ जाती है तो वो आध्यात्मिक बन जाती है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे अपराध हैं, हम भौतिक हैं, लेकिन जब कोई जीव भगवान की भक्ति करना स्टार्ट करता है तो वो दिव्य बन जाता है। जिस प्रकार भगवान के होंठों में लगा हुआ शंख कैसे लाल दिख रहा था, तो उसी तरह से आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, परमहंस अर्थात अत्यंत बुद्धिमान पुरुष आध्यात्मिक आनंद रूपी जल में कलहंस के समान है। जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान भक्त हैं, जो बुद्धिमान पुरुष भगवान कहते हैं बुद्धिमान कौन है, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है वो कौन है, जो मेरी शरण में आता है। तो शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं वो ही परम हंस हैं जो अत्यंत ही बुद्धिमान पुरुष हैं, आध्यात्मिक आनंद रूपी जल में कलहंस के समान है, और जो भगवान के चरण कमलों से नित्य अलंकृत होता है, और वो क्या करता है, सदैव भगवान के चरण कमलों से लगा रहता है, चरण कमलों से दूर नहीं जाता। तो वो क्यों इतना, मतलब वो आध्यात्मिक क्यों बन जाता है, क्योंकि वो भगवान के सानिध्य में रहता है। उसी तरह से यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि यदि हमें भौतिक कलमश को समाप्त करके वास्तव में आध्यात्मिक स्टेज पर आना है तो उसका एक ही तरीका है कि हमें भगवान के संपर्क में आना चाहिए, आना पड़ेगा। जिस प्रकार श्वेत शंख भी भगवान के संपर्क में आकर दिव्य लग रहा था, दिव्य जैसा हो गया था, इसी तरह से हम साधारण जीव भी जब भगवान का सानिध्य प्राप्त करेंगे तो आध्यात्मिक बन जाएंगे। तो भगवान का सानिध्य कैसे प्राप्त करें, अभिन्नत्वान नाम नामिनो, भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। इसे जब कोई जीव भगवान के पवित्र नाम का जप करता है तो फिर वो आध्यात्मिक धरा तक कर तक पहुंच जाता है। आगे सुत गोस्वामी कहते हैं श्लोक नंबर 3 में, तमो पश्रुत्य निनदम जगत भय भयावहम प्रत्युत्ययुः प्रजा सर्वा भर्तृदर्शन लालसा तमो पश्रुत्य निनदम जगत भय भयावहम प्रत्युत्ययुः प्रजा सर्वा भर्तृदर्शन लालसा तमो पश्रुत्य निनदम जगत भय भयावहम प्रत्युत्ययुः प्रजा सर्वा भर्तृदर्शन लालसा तमो पश्रुत्य, अर्थात उस उपश्रुत्य मतलब सुनकर, जैसे भगवान ने अपना शंख बजाया, जैसे ही भगवान के शंख की ध्वनि प्रकट हुई तो उस ध्वनि का प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर वे कह रहे हैं कि निनदम, यानी वो जैसा ही शब्द जैसे ही सुना सबने, तो क्या हुआ, जगत भय भयावहम, संसार का भय, जगत कहते हैं संसार को, भय अर्थात खौफ डर, भयावहम अर्थात वो डर भी डर के भाग गया। मतलब इसका कहने का अर्थ यह क्या है कि जीवों के समस्त भय का नाश करने वाली वो ध्वनि, और यहाँ पर ना जो शंख होता है ना, वास्तव में शास्त्र भी कहता है शंख बाजे बलाएं भागे, जैसे शंख बजता है तो जितने भी वो अपशगुन होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, शंख के शब्द से भूत प्रेत भी भाग जाते हैं। तो
वो जो साधारण शंख होता है, जो कोई साधारण व्यक्ति बजाता है, उसका भी इतना सुंदर प्रभाव पड़ता है। इसे जब भी हम पूजा करते हैं, जब भी हम अभिषेक करते हैं, या जब कोई शुभ कार्य किया जाता है तो उसमें शंख बजाया जाता है, वो शंख ध्वनि मंगलमयी होती है। वो बहुत ही उससे मंगल होता है, अपवित्रता और ये जो हमारा अहित है वो समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पर ये विचारणीय बात है कि कोई साधारण अपराधी जीव भी अगर शंख बजाता है, जो कि साधारण शंख होता है, तो उससे भी इतने शुभ परिणाम निकलते हैं। तो आज जो शंख बजा रहा है वो साक्षात भगवान है। भगवान के शंख का क्या कहना। तो भगवान का जैसे ही शंख बजा, जगत भय भयावहम, संसार के सारे भय, संसार के सारे अमंगल, संसार के सारे कष्ट सब दूर हो गए, है ना। तो उस समय क्या हुआ, जैसे ही तमुपश्रुत्य निनदम जगत भय भयावहम, उस शंख को सुनते ही समस्त प्राणियों का भय समाप्त हो गया। वास्तव में भगवान इतने समय से द्वारिका में थे, तो इतने समय से हस्तिनापुर में थे, और वो भी कहाँ पर, युद्ध भूमि में। अब युद्ध भूमि में थे तो समस्त द्वारिकावासी, जो कि भगवान से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, और जब हम किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और वो किसी ऐसी जगह पे जाता है जहाँ पर खतरा होता है, तो हमें हर वक्त भय बना रहता है, कहीं कोई अशुभ बात ना हो जाए, कहीं कुछ ऐसी घटना ना घट जाए जो हम सुनना नहीं चाहते। लेकिन फिर भी प्रेमियों का ये स्वभाव होता है कि हर वक्त सोचते रहते हैं अपने प्रेमी के विषय में, वहाँ गया है कहीं उसे कुछ हो न जाए, कुछ चोट न लग जाए, तो हृदय सदैव भयभीत रहता था। लेकिन अब क्योंकि भगवान ने शंख ध्वनि कर ली है, शंख ध्वनि का एक मतलब ये भी होता है विजय घोषणा, कि मैं विजयी होके आया हूँ, देखो। तो सारे जीवों के हृदय से भय समाप्त हो गया। प्रत्युत ययुः प्रजा सर्वा, प्रत्युत ययुः का मतलब होता है कि तेजी से, अब क्योंकि इतने समय से रोज भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो जैसे ही शंख ध्वनि सुनी तो प्रत्येक व्यक्ति द्वारा भगवान, उनका सिर्फ एक ही अब उनको ऐसा लग रहा था कि हम जो शंख बजा रहा है जल्दी से जल्दी जाके हम उसके दर्शन करें, बस एक क्षण भी हमें अब दूरी बर्दाश्त नहीं करनी है। अब वो आ गए हैं, कौन आ गए हैं, भर्तृ। भर्तृ का मतलब होता है हमारे रक्षक, हमारे प्राणों के प्राण आधार, अवर सोल एंड हार्ट, हमारे भगवान, हमारे दिल के, हमारी जीवन की सुरक्षा करने वाले हमारे भर्तृ। अब वो आ गए हैं तो दर्शन लालसा, उनके दर्शन की लालसा उनको इतना तेज चलने पर विवश कर रही थी, इतनी लालसा हो रही थी उनको कि कोई व्यक्ति भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाह रहा था, किसी के हृदय में ऐसा विचार नहीं आ रहा था कि चलो सब जाना चाह रहे हैं, दूसरों को थोड़ा सा आगे जाने दें, अब हम थोड़ा पीछे चलते, नहीं। बस सबके अंदर एक ही अभिलाषा थी कि मैं ही सबसे आगे जाकर प्रथम दर्शन द्वारिकाधीश का मैं करूं। हम इस प्रकार की लालसा का अंदाजा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास तो इतना प्रेम है नहीं भगवान के लिए, तो हम कैसे बता सकते हैं कि वो किस तरह से, कैसी लालसा होगी उनके मन में। बस ऐसा लग रहा था कि जिस प्रकार यदि कोई मरने वाला जीव हो और वो किसी तरह से छटपटा रहा हो, जैसे अगर किसी का गला पकड़ लिया जाए, नाक पकड़ ली जाए, वो सांस भी ना ले सके, तो उस समय जीने की कैसी लालसा होती, बचाओ बचाओ, छोड़ो मुझे छोड़ो। तो जैसे उस समय अपने सांस लेने की जैसी लालसा होती है ना, उसी प्रकार ये द्वारिकावासी भगवान को मिलने की तड़प थी उनके हृदय में, इतनी लालसा थी, बल्कि उससे भी कई गुना अधिक उनकी लालसा थी। तो उस लालसा के चलते वो हर कोई प्रत्युत प्रत्युत ययु प्रजा सर्वा। सर्वा का मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति, द्वारिका का हर एक व्यक्ति, यानी एक साल से लेकर 100 साल तक जितने भी व्यक्ति थे वो सारे के सारे भगवान के दर्शन करने की लालसा लेकर भगवान की ओर बढ़ रहे थे। जैसे उन्होंने शंख सुना तो भले जो भी कर रहे थे सारे अपने कार्य छोड़कर भाग भाग कर कृष्ण की ओर आ रहे थे, बहुत तेजी से भगवान की ओर बढ़ रहे थे। अनुवाद, उस शब्द को सुनकर जो भौतिक जगत में साक्षात भय को भी भयभीत बनाने वाला था, द्वारिका के नगर नागरिक उनकी ओर तेजी से आगे बढ़े, जिससे वे भक्तों के रक्षक भगवान का चिर अभिलषित दर्शन कर सकें। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि भगवान कृष्ण के समय द्वारिका में जो नागरिक रह रहे थे वे सभी मुक्त जीव थे, जो भगवान के दल बल के साथ अवतरित हुए थे। वे सभी भगवान के दर्शनों के लिए लालायित थे। यद्यपि आध्यात्मिक स्पर्श के कारण वे उनसे कभी विलग नहीं थे, जिस प्रकार वृंदावन की गोपियां भगवान श्री कृष्ण के गौचारण के समय उनके गांव से दूर जाने पर सदैव उनके विषय में सोचती रहती थी, उसी प्रकार द्वारिका के नागरिक द्वारिका से दूर कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लेने के लिए गए थे और कृष्ण के विचारों में ही लीन रहते थे। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि जब वहाँ ब्रज में भगवान गैया चराने के लिए जाते थे तो जैसे ही भगवान जा रहे होते थे, जिस रास्ते से वन की ओर जा रहे थे, तो सारे ब्रजवासियों की निगाहें उसी रास्ते पर एक टिक लगी रहती थी। वो अब पथरा जाती थी उनकी आंखें, बस उनको ऐसा लगता था कि अब सांस लेना बिल्कुल फिजूल है, जब भगवान है नहीं, भगवान चले गए, हमारे नेत्रों से भगवान दूर हो गए हैं, तो अभी हम जी कर क्या करें। उनको ऐसा लगता था, जीवन भी बोझ लगता था। वो सारा समय अपना कोई कार्य भी करते थे तो भी हर वक्त उनकी निगाह उसी रास्ते पर होती थी कि कब कृष्ण वापस लौटेंगे, कब कृष्ण वापस लौटेंगे। और जब कृष्ण वापस लौटते थे गौ चराने के बाद, शाम को जब संध्या समय भगवान आते थे, तो गोपियां एक टक भगवान को निहारती थी और उस समय ब्रह्मा जी को बहुत दोष देती थी। बोलती थी, ब्रह्मा जी ना उसको तो नेत्र बनाने भी नहीं है, ऐसे कोई नेत्र बनाए जाते हैं, नेत्र बनाए तो उसके ऊपर पलकें रखने की क्या आवश्यकता थी, ये पलकें तो बोझ बन गई हैं, बार बार झपकती हैं और फिर उस समय के लिए भगवान हमारे नेत्रों से दूर हो जाते हैं। वो एक पलक झपकने का समय उनके लिए बरसों का समय बन जाता था, क्योंकि अब वो भगवान जब आ गए हैं तो उनको देखे बगैर वो एक पलक तक भी नहीं रहना चाहते थे। तो जितना प्रेम गोपियां भगवान से करती थी उतना तो कोई नहीं करता, लेकिन द्वारिका वासियों की भी उसी प्रेम के साथ तुलना करते हुए श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं वही, क्योंकि अभी संसार में भी होता है, हमारे हृदय में जितना प्रेम होता है हम अपने प्रेमी को देते हैं ना? अब कोई भौतिक व्यक्ति से भी यदि कोई प्यार करता है तो फिर क्या होता है, जब वो हमसे दूर हो जाता है तो फिर हमें बहुत उसको याद आती है, और जब वापस आता है तो हम बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे होते हैं, उनको उसके साथ समय बिताने के लिए। लेकिन ये भौतिक प्रेम नहीं होता, ये केवल आकर्षण होता है। भौतिक संसार में किसी से कोई प्रेम कर ही नहीं सकता, प्रेम तो केवल आत्मा कर सकती है परमात्मा के साथ, क्योंकि भौतिक जगत में जो भी प्रेम है वो इस शरीर से रिलेटेड है। आप शरीर में जब तक आत्मा है, भले प्रेम आत्मा से है लेकिन वो शरीर में जब तक होगी तभी प्रेम होगा। आत्मा को अलग खड़ा कर दिया जाए और शरीर को अलग खड़ा कर दिया जाए, और जो व्यक्ति आपसे बोलता है कि प्रेम करता हूं मैं आपसे, उसको बोलो दोनों में से एक चुनो, क्या चुनेगा वो। शरीर उसके काम का नहीं, आत्मा उसे समझ में नहीं आएगी। मतलब वो वास्तव में प्रेम नहीं होता, शरीर और आत्मा जब मिल जाते हैं तो उसके प्रति जो अट्रैक्शन होती है ना, उसको संसार प्रेम की प्रेम का नाम देता है, लेकिन वास्तविक प्रेम तो कृष्ण के साथ होता है, आत्मा का, परमात्मा के साथ प्रेम। और जब ऐसा प्रेम हो जाता है तो हर एक क्षण अपने प्रेमी की याद में जब गुजरता है, और जब याद करते करते एक दिन ऐसा आता है प्रेमी समक्ष खड़े हो जाते हैं, तो उस समय की जो घटना होती है, उस समय का जो भाव होता है, उसको वर्णन नहीं किया जा सकता, केवल रियलाइज किया जा सकता है। उसी के विषय में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, जिस प्रकार वृंदावन की गोपियां भगवान कृष्ण के गौचरण के समय उनसे उनके गांव से दूर जाने पर सदैव उनके विषय में सोचती रहती थी, उसी प्रकार द्वारिका के नागरिक द्वारिका से दूर कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लेने के लिए गए कृष्ण के विचारों में लीन रहते थे। बंगाल के कुछ सुप्रसिद्ध कथा लिखकों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि वृंदावन, मथुरा तथा द्वारिका के कृष्ण भिन्न भिन्न व्यक्ति थे, किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से इस निष्कर्ष की कोई सच्चाई नहीं है। कुरुक्षेत्र के कृष्ण तथा द्वारिका के कृष्ण एक ही व्यक्ति हैं। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, द्वारिका के कृष्ण और कुरुक्षेत्र के कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, वो एक ही कृष्ण है। तो जब द्वारिका के कृष्ण कुरुक्षेत्र में चले जाते हैं तो द्वारिका वासियों को बहुत दुख होता है, और जब आज भगवान वापिस आए हैं तो वो उनके दर्शन की लालसा के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। द्वारिका के नागरिक दिव्य नगरी से भगवान श्री कृष्ण की अनुपस्थिति के कारण उसी प्रकार शोकाकुल थे, जिस प्रकार रात्रि में सूर्य की अनुपस्थिति से हम सब उद्विग्न हो जाते हैं। भगवान द्वारा किया गया शब्द प्रभात के समय सूर्य उदय जैसा था, अतएव द्वारिका के सारे वासी निद्रा से जाग गए, क्योंकि कृष्ण रूपी सूर्य का उदय हो चुका था, और वे सब फुर्ती से उनका दर्शन पाने के लिए उनकी ओर बढ़े। भगवत भक्त अन्य किसी को अपना रक्षक नहीं मानते, क्योंकि उनको पता है कि भले ही भौतिक दृष्टि से कोई भी हमारे साथ हो, परंतु भर्तृ दर्शन लालसा, वास्तव में हमारा भर्तृ, वास्तव में हमारा रक्षक कोई है तो वो कृष्ण है। तो जब कृष्ण आए तो उन्हें ऐसा लगा हमारे अंधेरे जीवन में सूर्य उदय हो गया है, तो सब लालसा लेकर भगवान की ओर बढ़ रहे हैं। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान का यह शब्द भगवान से अभिन्न है। जैसा कि हम भगवान की अद्वैत स्थिति की व्याख्या करते समय बता चुके हैं कि भगवान से रिलेटेड हर वस्तु भगवान ही है। भगवान का नाम, भगवान की बात, भगवान की लीला, भगवान स्वयं, उसमें कुछ भी भिन्न नहीं है, सब कुछ अभिन्न होता है। हमारी वर्तमान भौतिक स्थिति भय से ओतप्रोत है। आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन, इन चार समस्याओं में से भय सबसे अधिक कष्ट पहुंचाने वाला है। हम अगली समस्या को ना जानने के कारण सदैव भयभीत रहते हैं। ये हमारा जगत समस्याओं से भरा पड़ा है, अतएव भय की समस्या सर्व प्रमुख रहती है। इसका कारण भगवान की माया के साथ हमारा सानिध्य है। श्री प्रभुपाद जी व्याख्या कर रहे हैं, जगत भय भयावहम, क्योंकि संसार में सब भयभीत होते हैं। जिनके पास कोई वस्तु नहीं होती है तो वो प्राप्त करने के लिए भयभीत होते हैं कि मुझे ये प्राप्त हो जाए, वरना तो मुझे मेरा जीना संभव नहीं। और जिसके पास प्राप्त हो जाती है तो वो उसकी सुरक्षा के लिए भयभीत होता है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, हमें आगे के फ्यूचर का पता भी नहीं होता, इसलिए भी भयभीत हो जाए कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो ये संसार जो है वो समस्याओं से भरा हुआ है, इसलिए भय की समस्या सबसे प्रमुख है। भय होता है ना, फ्यूचर का भय होता है। हम हर कार्य भय से करते हैं आज, कि कहीं ये हो गया तो ये वो क्या सोचेगा, हर चीज का हमें भय होता है। तो इसका कारण भगवान की माया के साथ हमारा सानिध्य है। फिर भी जब कभी भगवान की ध्वनि होती है, जो उनके पवित्र नाम का
प्रतिनिधित्व करती है, जैसा कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने निमित लिखित 16 शब्दों द्वारा उच्चरित की थी। यहाँ शिला प्रभुपाद जो होते भगवान के नाम की ध्वनि जब होती, आज अभी क्योंकि भगवान ने क्या किया था, शंख बजाकर सबका भय दूर किया था, लेकिन भगवान से रिलेटेड हर एक वस्तु वही है, अभिन्न है, भगवान ही है। भगवान का शंख, भगवान की लीलाएं, भगवान के परिकर सब अभिन्न है। तो भगवान का नाम अभिन्नत्वान नाम नामिनो, भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो जो उनके पवित्र नाम का प्रतिनिधित्व करती है, जो ये ध्वनि है, जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने निम्नलिखित 16 शब्दों द्वारा उच्चारित किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो सारा भय भाग जाता है जब हम भगवान के पवित्र नाम का आश्रय लेते हैं। क्योंकि पूर्ण सिद्धो नित्य मुक्तो, ये भगवान का नाम पूर्ण सिद्ध है, परफेक्ट है, नित्य है, मुक्त है, अभिनत्वान नाम नामिनो, नाम में और नामी में कोई अंतर नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्र अर्पिता, भगवान ने अपनी सारी शक्ति अपने नाम में अर्पित कर दिए। तो हम इन शब्दों का लाभ उठाकर संसार की भयावह समस्याओं से उबर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, वे तो संसार दुखों का घर है, भयभीत कर देगा, हर एक क्षण हमें भयभीत करता है, लेकिन यदि हम भगवान के पवित्र नाम का सहारा लेंगे तो हमारे सारे भय सब समाप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे ढंग से कर सकूं। हरे कृष्ण।